हॉस्पिटल में अपना काम निपटाने के बाद दीवा घर जाने के बजाय सीधा पुलिस स्टेशन में अपने डैड नवीन गोयंका से मिलने गई। वहीं इस वक्त किसी काम के सिलसिले में आर्यांश भी जेल आया हुआ था। दीवा को वहां देखकर आर्यांश के चेहरे के सर्द हो गए। वहीं दीवा आर्यांश की मौजूदगी से अनजान सीधा अपने पापा से मिलने के लिए मीटिंग रूम में पहुंची। दीवा ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। नवीन के शरीर पर चोट के निशान थे, वो थके हुए लग रहे थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी दीवा को देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। नवीन के चेहरे पर मुस्कान देखकर दीवा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने डैड से मिलने के लिए उसे जेल जैसी जगह पर आना पड़ेगा। ऊपर से उन्हें तकलीफ ना हो, ये सोचकर वे अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। दीवा जल्दी से उनके पास गई और उनके गले लग गई। उसने सुबकते हुए कहा, डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। दीवा को रोते हुए देखकर नवीन जल्दी से उससे अलग हुए। उन्होंने दीवा के आंसुओं को साफ करते हुए प्यार से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बेवजह रो रही हो, जब सब साबित हो जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, तुम तो मेरी स्ट्रांग बेटी हो, फिर तुम क्यों रो रही हो। इतनी तकलीफ में भी नवीन के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कुराहट थी। दीवा उनकी चोटों की ओर देख रही थी। वो समझ सकती थी कि नवीन से सच उगलवाने के लिए जरूर उन्हें मारा पीटा होगा। उसके होते हुए उसके पिता को इस तरह जेल में रहना पड़ रहा था, ये सोचकर दीवा की सांसें भारी होने लगी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही डैड, दीवा ने भरी आवाज में कहा। दीवा की परेशानी का कारण नवीन समझ सकते थे। उनकी चोटों के निशानों की वजह से शायद दीवा को और ज्यादा बुरा लग रहा था। नवीन ने दीवा का गाल सहलाया और कहा, आगे से ये कभी मत कहना कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम एस डॉक्टर बन गई हो और तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम लोगों की जान बचा सकती हो। मेरी बेटी महान काम करने के लिए पैदा हुई है। मुझे पता है तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरे माथे और बाकी जगह पर चोट के निशान हैं। कल मेरा पैर फिसल गया था, इस वजह से ये चोट आ गई थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नवीन दीवा को समझाने लगे ताकि उसके दिल पर किसी तरह का बोझ ना रहे। काश मैं डॉक्टर बनने के बजाय बिजनेस ज्वाइन कर लेती तो मुझे पता रहता कि कौन सी चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से जल्द बाहर निकलवा लूंगी, दीवा ने जवाब दिया। नवीन ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। उनके पास मिलने के लिए ज्यादा समय नहीं था। नवीन को ले जाने के लिए कांस्टेबल आ चुके थे। जाने से पहले नवीन ने दीवा को अपना और अपनी माँ का ख्याल रखने को कहा। उनके जाते ही दीवा वहीं खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ कोई शख्स ऐसा था जो दीवा को स्क्रीन पर रोते हुए देख रहा था। वो कोई और नहीं, आर्यांश कपूर था। उसके पास में एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। दीवा को रोते हुए देखकर आर्यांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, ये तो तुम्हारी तकलीफों की शुरुआत है दीवा गोयंका, आगे तुम्हें बहुत रोना पड़ेगा। दीवा को एक नज़र देखने के बाद आर्यांश पुलिस वाले की तरफ पलटा और बोला, इसे अंदर क्यों बंद किया गया है? सर, इसने अपनी ही कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा खाया है, पैसे को गबन करने के साथ ही काफी लोन ले रखा है, वो भी चुकाया नहीं, जांच चल रही है, पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया। ठीक है, फिर जांच करते रहो, जब तक मैं ना कहूँ ये यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, आर्यांश बोला, जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यांश के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, वो दीवा को तकलीफ देना चाहता था। वहीं उनसे अलग दीवा अब वहां से बाहर निकलकर रोड पर बेसुध होकर चल रही थी। बाहर ठंडी हवाएं चलने की वजह से वो खुद की बाहों को सहला रही थी। दीवा के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर ऊपर देखते हुए कहा, आप इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? मेरे डैड ने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया था, वो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया था, फिर उन्हें ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है? मेरे साथ जो भी हुआ मैंने उसके लिए आपसे कभी शिकायत नहीं की, पर मेरे डैड ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। दीवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इतने लोग उसे रोते हुए देख रहे थे, वो फिर भी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए रोए जा रही थी। ये करना जरूरी भी था क्योंकि जब वो घर जाती तो वो प्रार्थना के सामने रो नहीं सकती थी। चलते हुए दीवा ने आसपास देखा तो कुछ लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। दीवा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। दीवा ने जल्दी से कॉल उठाया तो दूसरी तरफ सिस्टर लीजा थी। उसने दीवा से कहा, डॉक्टर गोयंका आप कहाँ रह गई? हॉस्पिटल से भी जल्दी निकल गई थी, सॉरी मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन आज रात को कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की खास मीटिंग रखी है, ये एक डिनर गैदरिंग है, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, आप प्लीज पहुंच जाइए। हाँ मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ, दीवा ने जवाब दिया। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। हाँ लेट मत करना, सर ने सबको खास कहा है कि मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, लीजा ने कहा और फिर कॉल काट दिया। दीवा वहां से पास ही के मॉल में गई और टचअप करके लोकेशन पर पहुंच गई थी। वो मुंबई का सबसे बड़ा 7-स्टार होटल था। दीवा आखिरी बार वहां पर अपनी मॉम डैड के साथ आई थी जब वो लगभग 10 साल की थी। उसे होटल का टॉप फ्लोर अपने स्पेशल बने टेरेस और अरेंजमेंट के लिए काफी फेमस था। दीवा ने वहीं पर डिनर किया था। अपने मॉम डैड के साथ बिताए पुराने खुशनुमा पलों को याद करके दीवा इमोशनल होने लगी। फिलहाल उसके पास दुख मनाने का वक्त नहीं था, इसलिए वो सीधा अंदर गई। रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर दीवा ने पूछा, मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर दीवा गोयंका हूँ, मिस्टर आलोक रंधावा की तरफ से। क्या उन्होंने कोई टेबल बुक की है? हाँ, आज की डिनर गैदरिंग के लिए पूरा टॉप फ्लोर बुक किया गया है। मैं वेटर को बोल देती हूँ, वो आपको वहां तक छोड़ देगा, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। पूरा टॉप फ्लोर बुक था, इसका मतलब मीटिंग सच में खास होने वाली थी। दीवा वहां पहुंची तो उसने देखा बाकी सारे लोग वहां आ चुके थे। डिनर अरेंजमेंट काफी अच्छा किया गया था, सब लोग एक साथ बैठ सके इसलिए बड़ी सी टेबल रखी गई थी। दीवा ने एक चीज नोटिस की कि हेड ऑफ द टेबल की जगह पर आलोक रंधावा नहीं बैठे थे, वो जगह खाली थी। इसका मतलब कोई और भी वहां आने वाला था। दीवा को देखते ही आलोक ने मुस्कुरा कर कहा, अरे डॉक्टर गोयंका आप आ गई, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, दीवा उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली। कोई बात नहीं, इस पार्टी को अरेंज करने वाला मेहमान अभी आया नहीं है, तो हम आज आपकी लेट लतीफी को झेल सकते हैं, आलोक ने हल्के लहजे में कहा और फिर दीवा को बैठने का इशारा किया। आलोक उम्र में लगभग 55 साल के थे। वो सबके साथ काफी फ्रेंडली बिहेव रखते थे और मजाकिया अंदाज के आदमी थे। वो कौन है? दीवा ने बैठते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था कि दीवा के अलावा वहां बाकी लोग भी नहीं जानते थे कि आज इस पार्टी का कारण क्या है या फिर उनका मेहमान कौन है। बाकी सभी सवालिया नजरों से आलोक की तरफ देख रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों के आने की आहट हुई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गई थी। वहां लगी खूबसूरत लाइटों के बीच से बिल्कुल किसी हीरो की तरह चलते हुए आर्यांश कपूर आ रहा था। सब उसे देखकर एक्साइटेड होकर खुश हो गए। वहीं उनसे अलग दीवा ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थी। हाँ, आज उनकी पार्टी का मेहमान आर्यांश कपूर था, जो वहां किस इरादे से आया था उससे वो पूरी तरह अनजान थे।
Comment and rate after reading.